आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। लेबर सरकार अपने बजट में प्रस्तावित टैक्स बदलावों को लेकर उच्च रही आलोचनाओं को कम करने के लिए छोटे व्यवसायों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स में रियायतों का दायरा बढ़ाने जा रही है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने घोषणा की है कि छोटे व्यवसायों के लिए मौजूदा 50% एक्टिव एसेट CGT रियायत की पात्रता सीमा को $20,00,000 से बढ़ाकर $1,00,000,000 वार्षिक कारोबार तक किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से लगभग 27,00,000 छोटे व्यवसायों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए एक नई कर रियायत भी प्रस्तावित की गई है। वहीं विपक्ष नेता एंगस टेलर का कहना है कि लेबर सरकार द्वारा घोषित ये बदलाव पर्याप्त नहीं है और इससे छोटे व्यवसायों की चिंताओं का पूरी तरह समाधान नहीं होगा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट कमीशन ने बिजली मूल्य निर्धारण प्रणाली की व्यापक समीक्षा के बाद ऐसे नियमों का प्रस्ताव रखा है जिनके तहत ऊर्जा कंपनियों को ये बताना पड़ सकता है कि उनके कितने ग्राहक बेहतर और सस्ती योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। इस समीक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य तथाकथित लॉयल्टी टैक्स से निपटना है। ये वह स्थिति है जब ग्राहक शुरुआती छूट वाली योजनाएं समाप्त होने के बाद महंगी योजनाओं पर बने रहते हैं और अधिक भुगतान करते हैं। प्रस्तावों के तहत ऊर्जा कंपनियों को लंबे समय से जुड़े ग्राहकों को ये भी बताना पड़ सकता है कि वे सस्ती योजनाओं पर जाकर कितनी बचत कर सकते थे। वहीं सिडनी के दक्षिण पश्चिमी उपनगर कैब्रामाटा में स्कूल की छुट्टी के बाद हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक 5 वर्षीय बच्ची और उसके 14 महीने के भाई की मृत्यु हो गई है। पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर लगभग 3:15 बजे दोनों बच्चे अपनी मां के साथ सड़क पार कर रहे थे, तभी एक SUV वाहन ने उनके प्रैम को टक्कर मार दी। मृत बच्चे की पहचान 5 वर्षीय कैथरीन और 14 महीने के हैरी के रूप में हुई। इस हादसे के बाद स्थानीय समुदाय में शोक की लहर है और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में नेट ओवरसीज माइग्रेशन लगभग 3 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2025 में यह आंकड़ा लगभग 3,01,000 रहा, जो कि पिछले 12 महीनों की तुलना में करीब 9% कम है। नेट ओवरसीज माइग्रेशन उस अंतर को दर्शाता है जो ऑस्ट्रेलिया में बसने आने वाले लोगों और देश छोड़ के जाने वाले लोगों की संख्या के बीच का होता है। इस बीच प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को शामिल करने पर 2025 में ऑस्ट्रेलिया की आबादी 1.5% बढ़कर 2,78,00,000 हो गई। कोषाध्यक्ष जिम चामर्स का कहना है कि लेबर सरकार के सत्ता में आने के समय प्रवासन दर काफी ऊंची थी, लेकिन अब इसमें उल्लेखनीय कमी आ गई है। वहीं न्यू साउथ वेल्स की डिप्टी कोरोनर हैरियट ग्राहम ने कहा है कि लगभग 40 वर्ष पहले टैमवर्थ में एक अबोरिजिनल किशोर की मृत्यु की जांच पर नस्लवाद का प्रभाव पड़ने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। 17 वर्षीय मार्क हेन्स का शव जनवरी 1988 में टैमवर्थ के बाहर रेलवे पटरियों पर मिला था। पोस्टमार्टम में पाया गया था कि गोमेरॉय समुदाय के इस किशोर की मृत्यु सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। प्रारंभिक जांच में निष्कर्ष निकाला गया था कि मार्क या तो स्वयं पटरियों पर लेट गए थे या फिर भ्रमित अवस्था में वहां पहुंचे थे। हालांकि उनके परिवार ने लंबे समय से इस मामले में किसी आपराधिक साजिश या संदिग्ध परिस्थिति की आशंका जताई थी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान सरकार ने अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम पुख्ता होने का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने कहा कि उनका देश मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता का समर्थन करना चाहता है तथा क्षेत्र के पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रयासों में भी योगदान देने के लिए तैयार है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जापान द्वारा युद्धपोत भेजने या समुद्री बारूदी को हटाने के अभियानों में शामिल होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और अंत में खबरें भारत से। भारत और ब्रिटेन के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट यानी CETA 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की द्विपक्षीय बैठक में इस फैसले पर अंतिम मुहर लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत UK संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारतीय किसानों, श्रमिकों, MSME और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। भारत और ब्रिटेन ने इस समझौते पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए थे और अब ये 15 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। इसी के साथ 18 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।